मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 3 सितंबर 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं और इस बड़े टॉपिक के तहत बहुत से छोटे छोटे सब टॉपिक हैं, तो आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर के लिए मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को चुना है। हालांकि सुनने में आपको यह बहुत सामान्य सा लगेगा, हो सकता है कि इसके बारे में आप जानते भी हों, लेकिन जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जो सामान्य से दिखने वाले टॉपिक हैं, जरूरी है कि इनका आपके पास व्यवस्थित अध्ययन हो, बहुत व्यवस्थित जानकारी इनके बारे में हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप सबसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे आप MSP के नाम से भी जानते हैं, इस पर बात करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, और साथ ही साथ आप अक्सर अखबारों में इसके बारे में पढ़ते होंगे, न्यूज में भी आपको सुनने को मिलता होगा। तो आइए थोड़ी सी इसके बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यह है न्यूनतम समर्थन मूल्य, तीन शब्द इसमें हैं। न्यूनतम यानी कि मिनिमम, मिनिमम आपको मिनिमम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? समर्थन दिया जाएगा। देखिए, सीधी सी बात है कि किस चीज का समर्थन दिया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि चूंकि अगला शब्द है मूल्य, यानी कि धन का समर्थन दिया जाएगा। न्यूनतम समर्थन, धन का समर्थन, न्यूनतम और मूल्य, तो न्यूनतम समर्थन जो दिया जाएगा उसका आधार क्या होगा, उसका मापदंड क्या होगा, उसका पैरामीटर क्या होगा, बस यही है न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसे आप इस रूप में समझ सकते हैं, शायद इस उदाहरण से आपके सामने बातें बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो सकेंगी। जैसे मान लीजिए कि धान है, ठीक है, धान का उत्पादन हुआ, बाजार में किसान वह धान बेचने के लिए पहुंचा, तो पता लगा कि चूंकि अब एक साथ उत्पादन हुआ है, मंडी में बहुत ज्यादा धान बिकने के लिए आ रहा है, तो जो व्यापारी हैं वो इसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि किसानों की कमजोरियों को वो जानते हैं कि किसान इस धान को अपने घर में नहीं रख सकता। एक तो इसको कर्ज चुकाना है बहुत सा, जो धान बोने से पहले इसने बीज लिया, इसने खाद के उधारी पर लिया है, कुछ और भी कर्ज लिया है, उन सबका भुगतान करना है, यानी कि ये धान बेचने के लिए मजबूर है, इसके पास स्टोर करने के लिए उतनी जगह भी नहीं है, तो ये बेचेगा ही बेचेगा, तो इसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि मंडी में सप्लाई धान की बहुत ज्यादा हो गई है, तो जो व्यापारी वर्ग होगा वो क्या करेगा कि इसकी कीमत को गिरा देगा, राइट। जैसे मान लीजिए कि 1 क्विंटल धान किसान जब पैदा करता है, तो पता लगा कि उस पर उसकी जो टोटल लागत है वो 900 रुपए आई, या यूं कह लीजिए कि 1000 रुपए आई। अब जब वो धान बेचने मार्केट में जाता है, व्यापारी इसका फायदा उठाते हैं और वो कहते हैं कि हम आपका धान 900 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। हो सकता है कि 900 रुपए ही उसकी लागत आई हो किसान की, या 1000 रुपए लागत आई हो, यहां तक कि किसान की जो अपनी लागत आती है उत्पादन करने में, उससे भी कम कीमत पर जो व्यापारी वर्ग है उनकी वस्तुओं को खरीदना चाहता है। अब ये जो किसान है ये बेचने के लिए मजबूर है, क्योंकि ये अपने पास अपना उत्पाद नहीं रख सकता, इसे धन चाहिए, पैसा चाहिए, तो अब वो क्या करेगा कि मजबूर होकर के अपना वह धान, मान लीजिए कि 1000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से वो बेच देता है। चलिए उसकी हम ये मान लेते हैं कि लागत भी 1000 रुपए आई थी, तो 1000 रुपए लागत आई और 1000 रुपए में उसने बेच दिया, तो उसने कमाया क्या? अब चूंकि उसने इस साल धान नहीं कमाया है, तो अब आप सोच करके देखिए कि उसका असर क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। हो सकता है कि वो धान का उत्पादन बंद कर दे, कुछ और चीज बोने लगे, कुछ और चीज की खेती करने लगे, और पता लगेगा कि वो जिस चीज की भी खेती कर रहा है व्यापारी वर्ग उसके साथ इसी तरह का व्यवहार करेंगे, वहां भी उसको फायदा नहीं होगा। वो कृषि करना ही बंद कर दे, खेती बाड़ी छोड़ करके कुछ और काम करने लगे, जैसे कि भारत में अब काफी कुछ ऐसा होने भी लगा है, लेकिन देश को तो अनाज चाहिए। तो अब इसमें सरकार फिर आती है, देखिए यहीं पर अब सरकार का रोल है। सरकार क्या करती है कि कोई भी फसल होने से पहले, याद रखिए कि फसल बोए जाने से पहले, वह एक मूल्य घोषित करती है, उदाहरण के तौर पर सरकार का एक अलग से विभाग है, उस पर हम लोग अगर समय हुआ तो आगे आएंगे। उसको बाकायदे जिम्मेदारी दी गई है कि आप कैलकुलेट कीजिए कि हमें कितना घोषित करना चाहिए, समर्थन मूल्य कितना घोषित होना चाहिए। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है बाकायदे एक CACP, ठीक है। तो वो देखती है कि अगर एक एकड़ खेत है, या यूं कह लीजिए चलिए एक क्विंटल धान के हम उदाहरण ले रहे हैं, तो एक क्विंटल धान के लिए कितने बीज की जरूरत होगी, कितने खाद की जरूरत होगी, कितनी और दूसरी चीजों की जरूरत होगी। तो उसको लगता है मान लीजिए कि 1000 रुपए किसान की लागत आती है, ठीक है, चूंकि हम 1000 की ही बात कर रहे हैं। तो ये जो आयोग है ये सिफारिश करेगा कि भाई किसान इतनी मेहनत करता है, साल में एक या दो फसल ही बोता है, तो उसको कम से कम 20% लाभ तो मिलना चाहिए। तो सरकार से सिफारिश करेगा कि इनको 1200 रुपए का रेट तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। सरकार फिर मान ली उसे स्वीकार कर देती है, ठीक है। सरकार जब उसे स्वीकार कर लेती है तो घोषित कर देगी कि इसका जो MSP है, धान का इस वर्ष का जो MSP है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो 1200 रुपए प्रति क्विंटल है, सरकार ने घोषित कर दिया, ठीक है। अब किसान अपना धान मंडी में लेकर जाता है। अब मंडी में लेकर के जब जाता है तो वहां तो उसका बिक रहा है 1000 रुपए, तो अब क्या किया जाए। तो सरकार के पास दो उपाय हैं, मूलभूत दो उपाय हैं। चूंकि उसने 1200 रुपए घोषित किया है न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो सरकार कहती है कि नहीं, आप हमारे पास धान लेकर के आइए, हम आपका जो धान है ये 1200 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। तो सरकार खुद खरीदना शुरू कर देती है, क्योंकि कई जगह सरकार भी अनाज खरीदती है, और सरकार को अनाज की जरूरत भी होती है, क्योंकि उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को चावल देना है, सस्ते रेट पर देना है, तो सरकार भी कुछ अनाज खरीदती है, वो गेहूं भी खरीदती है, वो चीनी भी खरीदती है। तो इस तरीके से सरकार 1200 रुपए में खरीदना शुरू कर देगी, तो सरकार के पास ही लोग बेचने के लिए जाने लगेंगे। फिर व्यापारी को लगेगा कि उसके पास तो धान आ ही नहीं रहा है, तो हो सकता है कि वह भी 1200 रुपए में खरीदना शुरू कर दे, पहली बात। लेकिन मुश्किल ये है कि क्या सरकार इतना धान खरीद सकती है, उसकी इतनी क्षमता है, उसके पास इतने साधन हैं। इनफैक्ट सच पूछे तो सरकार के पास उतने साधन नहीं है कि वो जितने भी धान का उत्पादन हो रहा है उनकी खरीदी कर सके। तब फिर सरकार ऐसी स्थिति में कुछ अलग अलग तरह की योजनाएं लेकर के आती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं इस एक योजना का नाम बताना चाहूंगा जो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, और उसका नाम उन्होंने दिया था भावांतर भुगतान योजना, प्राइस डेफिसिट फाइनेंसिंग स्कीम। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि अभी कुछ दिनों पहले जो हमारा यह आयोग है, इसने सरकार से सिफारिश की है कि आप जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हैं, ज्यादा अच्छा, आप खरीदी वगैरह मत कीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, चलिए आप जितना भी खरीद सकते हैं खरीद भी लीजिए, लेकिन बेहतर होगा कि आप जो बाजार में भाव का अंतर है, जैसे 1000 रुपए में बाजार में मिल रहा है, 1200 रुपए आपने घोषित किया हुआ है, तो 200 रुपए का अंतर आया, तो किसान जितना भी उत्पादन करता है उसको छोड़ दीजिए कि जाओ तुम 1000 रुपए में बेचो, वो रसीद ले आएगा कि मैंने 10 क्विंटल धान बेचा, तो 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 क्विंटल का 2000 रुपए होता है, वो आप उसे डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। अभी आयोग ने ये बात कही, तो अब आप इसको भावांतर योजना से देख सकते हैं। भाव का अंतर मतलब बाजार में जो भाव है और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, इन दोनों में जो अंतर है वह अंतर सरकार दे दे, उस अंतर का भुगतान सरकार कर दे, इसे ही कहा गया है भावांतर भुगतान योजना। लेकिन मित्रों अब सरकार इसके बारे में क्या निर्णय लेती है अब देखते हैं। तो अब आप देखिए कि इसकी परिभाषा क्या हुई। मेरी समझ से इस उदाहरण को समझने के बाद अब अगर मैं परिभाषा बताऊंगा तो शायद आपके तुरंत समझ में आ जाएगा। तो और दोस्तों यही सच पूछिए तो किसी सिविल सर्विस के लिए तो स्पेशली किसी भी टॉपिक को, चाहे वो किसी भी विषय का हो, पढ़ने का मुझे तो कम से कम सही तरीका मालूम पड़ता है। और एक बार आपकी पढ़ाई इस तरीके से हो जाती है या आपको इस तरीके से समझा दिया जाए तो आप पाएंगे कि वो चीज़ आपके जेहन में उतर जाती है और अपने आप आपका दिमाग उसके बारे में और दूसरे तथ्य सोचने की क्षमता हासिल कर लेता है। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हुई। खुले बाजार में सरकार के हस्तक्षेप का एक उपकरण यानी कि एक इक्विपमेंट है कि जो ओपन मार्केट है उसमें अब सरकार इंटरफेयर कर रही है, कर दिया ना सरकार ने इंटरफेयर कि 1,000 रुपए में तुम नहीं खरीदोगे, आप तुम 1,200 रुपए में खरीदोगे, अगर तुम नहीं खरीदोगे तो हम खरीदेंगे, तो सरकार का इंटरफेयर हो गया। अब सरकार सीधे डिमांड और सप्लाई पर धान को नहीं छोड़ रही है, तो खुले बाजार में सरकार के हस्तक्षेप का एक उपकरण। क्यों हस्तक्षेप? ताकि कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट होने पर भी, अब मेरे उदाहरण से आप इसको रिलेट कीजिए कि कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट होने पर भी किसानों को उनके उत्पादों का न्यूनतम मूल्य मिल सके। अब आप बताइए कि आपको क्या इस परिभाषा को समझने में जरा भी कोई दिक्कत हुई? सवाल ही नहीं उठता। और आप देखें कि इसी परिभाषा से अब आप एमएसपी के उद्देश्य को समझ सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य क्या हुआ? पहला तो यह है कि जो कृषि उत्पाद हैं उनके मूल्यों के गिरने से किसानों को जो नुकसान हो सकता है उससे किसानों को बचाना, ताकि किसान नुकसान होने से बच सके। क्योंकि अगर किसान को नुकसान होगा तो जैसा हम पहले बता चुके हैं कि किसान उस खेती का काम करना छोड़ देंगे या कोई और दूसरी चीज करने पैदा करने लगेंगे, जबकि हमको तो सभी चीजें चाहिए। और देखिए एक बात और भी होती है, जैसे मान लीजिए कि किसी साल धान का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया, आप सुनते हैं कभी गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी आप देखिए कि आलू और आपके जो टमाटर है इनके बारे में तो आप हर समय सुनते रहते हैं। अब देखिए जैसे ही ठंड के दिन आएंगे और आलू और टमाटर की फसल होगी तो इतने कम उनकी कीमतें हो गई हैं। प्याज के साथ भी होता है कि पता लगा कि किसान मंडी में जा रहे हैं, उनको जो पैसा मिल रहा है उसके बदले में उससे उनका ट्रांसपोर्ट का पूरा नहीं हो रहा है, अब वहां वो छोड़ करके चले जाते हैं क्योंकि वापस क्या ले जाएंगे, कैसे टमाटर को अपने घर में रखेंगे, तो लोग सड़कों पर फैला दे रहे हैं। ये हालत हो जाती है, यानी कि जब उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है तब वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। तो इसका एक पर्पज यह भी है कि अधिक उत्पादन होने पर जो उत्पादों के मूल्यों में जो तेजी से गिरावट आती है उस गिरावट को रोकना, यानी कि कुल मिलाकर यह है कि किसानों को नुकसान न हो, इस बात को देखना या कह लीजिए कि इस तथ्य को संरक्षित करना। तो दोस्तों यह है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब आप देखिए कि एक तो यह न्यूनतम समर्थन मूल्य है सरकार यहां दे रही है हमारे किसानों के लिए, सरकार दो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है, एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के हितों की रक्षा के लिए, और सच पूछिए नहीं केवल किसानों के हितों की रक्षा नहीं हमारे देश के भी हितों की रक्षा है, इसको अगर आप इनलार्ज करके जरा सोचेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और दूसरा इसी तरीके से एक और सरकार किसानों की मदद करती है वो है सब्सिडी, जिसे कृषि सब्सिडी कहते हैं, कृषि अनुदान, वह भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों, उस पर भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में इस विषय पर बस इतना ही, अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।